का था, रूह वही, रूप नया।
गाथा में आप सुन रहे हैं मालती जोशी द्वारा लिखित कहानी अनिकेत। प्रथम मिलन की खुमारी अभी आंखों से उतरी नहीं थी। वीरेश ने अलस भाव से फिर एक बार मृणाल को अंक में भर लेना चाहा, पर उसका हाथ खाली बिस्तर टटोलता रह गया। उसने उम्मीदी आंखों से अपने आसपास देखा, फिर आहट ली तो पता चला बाथरूम से नल की आवाज आ रही है। वह उठकर बैठ गया और प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद सदस्नाता मृणाल गाउन पहनकर बाहर आई। उसका मन फिर एक बार मचल उठा, पर नई नवेली पत्नी ने उसे सख्ती से बरस दिया। मन मार कर वह चुपचाप बैठा, टुकुर टुकुर उसे देखता रहा। पहले मृणाल ने अपने गीले बाल पोंछकर सवार लिए, फिर हल्का सा मेकअप किया, माथे पर बिंदी सजाई, मांग में सिंदूर दिया, फिर बड़े जतन से तहाकर रखी हुई साड़ी पहनने लगी। पत्नी को यूं सजते सवरते देखने का वीरेश का पहला अवसर था। क्षण क्षण बदलते उसके रूप को देखकर वह विस्मय विमुग्ध हो रहा था। जब ठीक से तैयार हो चुकी तो पायल पहनते हुए मृणाल ने पूछा, सुनो, वो जो आया बाई है ना? कौन आया बाई? वही कल दीदी ने जिनके पैर पड़वाए थे, कहा था ये हमारी माँ समान है, वीरू को इन्होंने ही पाला है। वे आयाबाई नहीं है, उन्हें हम जिया कहते हैं। हाँ, वो जो भी हो, मैं यह पूछ रही थी कि क्या उनके भी रोज पैर छूने होंगे। मतलब? मम्मी ने कहा था सुबह नहा धोकर बड़ों के पैर पड़ लिया करना। देखो, अव्वल तो इस समय जिया अपने घर पर होंगी, उनसे सामना होने की संभावना नहीं है, और अगर हो भी तो पैर पड़ने की जरूरत नहीं है। प्रणाम श्रद्धा की अभिव्यक्ति है, जिसके प्रति श्रद्धा ना हो उन्हें प्रणाम करना बेमानी है। नई नवेली पत्नी ने उसे घूर कर देखा और मुंह फुलाकर बाहर चली गई। तब उसे एहसास हुआ कि उसका स्वर कुछ तल्ख हो गया था। बुरा भी लगा, मधुयामिनी की सुबह बिला वजह कसैली हो गई थी। विशाखा दीदी हफ्ते भर साथ थी तो बड़ा सहारा था, वे ही मृणाल को सबसे परिचित करवाती रही, नाते रिश्ते समझाती रही। उसके कर्तव्यों की लिस्ट थपाते हुए पापा के स्वभाव के बारे में, वीरू की आदतों के विषय में बताती रही। वीरू ने दीदी से ही कहा कि एक बार फुर्सत से बैठकर मृणाल को जिया के बारे में सब बता दे, शायद वह समझ ले कि उन भाई बहनों के लिए जिया क्या है। दीदी ने सचमुच एक दिन मृणाल को पास बिठाकर पूरा वृतांत सुनाया। मां की मृत्यु के समय विशाखा 5 वर्ष की और वीरेश मात्र 2 महीने का था। 70 साल की दादी तो इस आघात से एकदम बौखला गई थी। उनकी उम्र बच्चे पालने की नहीं थी, उनका जप जाप सब छूट गया और वे बुरी तरह हाफने लगी। बेटा दूसरी शादी के लिए अभी तैयार नहीं था, और कौन नई दुल्हनिया आकर इस दूध मुहे बच्चे का भार उठाती। फिर दादी ने मुंशी जी की 17 वर्षीय बाल विधवा बहन को बुलवाया और बच्चा उसकी गोद में डाल दिया। कह दिया कि आज से यह बच्चा तुम्हारा हुआ, इसे पाल पोस कर बड़ा करो और मुझे चैन से राम का नाम लेने दो। यह काम दादी ने मुफ्त में नहीं करवाया, जिया के लिए एक निश्चित रकम भी बांध दी। यही नहीं, विशाखा के साथ उसे पढ़ने भी बिठाया ताकि आगे चलकर अपने पैरों पर खड़ी हो सके। दादी का विचार था कि बच्चों की ओर से निश्चिंत हो जाने पर वे बेटे को दूसरी शादी के लिए राजी कर सकेंगी, पर इस मोर्चे में वे असफल रहे। वीरू 10 साल का था जब दादी ने संसार से विदा ली। उसे अपनी माँ तो याद नहीं थी, पर दादी की मृत्यु उसके नन्हे से मन को झकझोर गई। अगर जिया पास ना होती तो वह टूट ही जाता। दादी की मृत्यु के बाद भी जिया की पढ़ाई बदस्तूर चलती रही। उन्होंने विशाखा के साथ ही मैट्रिक पास किया। इसके बाद विशाखा आगे की पढ़ाई के लिए हॉस्टल चली गई और जिया की पढ़ाई में विराम लग गया। यथावकाश वीरेश ने भी हाई स्कूल पास किया, वह भी हॉस्टल चला गया। पर छुट्टियों में घर आने की ललक दोनों बच्चों में बनी रही और इसका एक कारण जिया का अकृत्रिम स्नेह भी था। दीदी की शादी की तो पूरी तैयारी जिया ने ही की थी। मामी, मौसी, बुआ, चाची ये सब लोग तो समय पर आई थी, पर इससे पहले ही सब कुछ चाक चौबंद था। नेक दस्तूर का शगुन का सारा सामान करीने से पैकेटों में सजा हुआ था। सब पर बाकायदा चिटे लगी थी। दीदी का संदूक खुद अपने हाथों से तैयार किया था। भंडार घर में हर सामान मौजूद था। बिना चुना कुटा पिसा हर डिब्बे पर चिट लगी हुई थी। मेहमानों के नाश्ते का पूरा सरजाम था, कांच की बरनियों में सजा हुआ था। मेहमानों की आमद शुरू होते ही जिया ओट में हो गई थी, पर सारी तैयारी ऐसी परिपूर्ण थी कि किसी को आभास तक नहीं हुआ कि लड़की की माँ नहीं है। यही हाल वीरू की शादी में भी रहा। नेपथ्य में रहकर जिया ने व्यवस्था की पूरी बागडोर संभाली थी। किसी को चाहे कुछ भी पता ना हो, पर दोनों बच्चे जानते हैं कि जिया ने उनके लिए क्या किया है। हानी बीमारी में उनके लिए रात रात जागी है, उनकी भूख प्यास का हिसाब रखा है, उन्हें स्वेटर्स बनाकर पहनाए हैं, उनके लिए तरह तरह का नाश्ता बनाकर हॉस्टल में भेजा है, उनको उठने बैठने का, पहनने ओढ़ने का, बोलने का सलीका सिखलाया है। संक्षेप में यह कि वह सब किया है जो एक माँ करती है, इसीलिए वे दोनों बच्चे उन पर जान छिड़कते हैं। विशाखा भावुक होकर पूरी गाथा सुनाती रही और मृणाल तटस्थ भाव से सुनती रही। उसके चेहरे पर एक ऊब एक खीज थी जो विशाखा की नजरों से छुप ना सकी। उसने भाई से कहा भी, बेकार तुमने मुझसे सारी रामायण कहलवाई। शी वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड, एटलीस्ट शी नोज द फैक्ट नाउ, वीरू ने कहा। उससे क्या फर्क पड़ेगा, दीदी ने मुंह बनाकर कहा, और सचमुच कोई फर्क नहीं पड़ा। जिया के प्रति मृणाल का उपेक्षा का अवज्ञा का भाव वैसा ही बना रहा। विशाखा दीदी को यहां से सीधे अमेरिका उड़ना था, इसीलिए वीरेश ने अपनी हनीमून ट्रिप स्थगित कर रखी थी। दीदी की विदाई के बाद ही वे लोग गोवा जाएंगे और वहां से सीधे भोपाल अपनी नौकरी पर जाना यही तय हुआ था। विदाई वाले दिन पहली बार जिया ने उन लोगों के कमरे के बाहर खड़े होकर हौले से आवाज दी, बहुरानी। मृणाल का चेहरा एकदम तन गया था, फिर भी वह चुपचाप बाहर आकर खड़ी हो गई। सुनो बेटे, जरा अपने सुहाग भरे हाथों से अपनी दीदी का रोली टीका तो कर दो। खील बताशों से नारियल सुपारी से उनकी गोद भी भर देना। और फिर दीदी को चौकी पर बिठाकर उन्होंने मृणाल से सारी रस्में करवाई। खील बताशे आंचल में समेटकर दीदी ने पहले ठाकुर जी को प्रणाम किया, फिर पापा के पैर छुए। इसके बाद जिया के गले लग गई, दोनों खूब रोईं। बड़ी मुश्किल से दीदी को चुप कराया जा सका। ये काम भी जिया को ही करना पड़ा। 10 हिदायतें देकर उन्होंने दीदी को विदा किया। पापा, वीरू और मृणाल गेट तक छोड़ने गए। जिया ओट में खड़ी सश्रु नेत्रों से देखती रही। जाते समय विशाखा बार बार जताकर गई थी, पापा अब जल्दी से अपना पासपोर्ट बनवाइए, आपको मेरे यहां आना है और पूरे 6 महीने तक रहना है। अब वीरू की शादी हो गई है, अब आपको कोई बहाना नहीं चलेगा। अगले 4 साल तक ना विशाखा ही आ पाई, ना पापा का जाना ही हो सका। पापा जाने का मन नहीं बना पाए क्योंकि बहू का पांव भारी था। कुणाल के जन्म के बाद तो वे पोते के मुंह में ऐसे बंध गए कि बेटी से किया हुआ वादा भी भूल गए। भोपाल उन्हें कभी अच्छा नहीं लगा था, पर कुणाल के लिए उनके बार बार चक्कर लगते रहे। वीरेश उनके पासपोर्ट की व्यवस्था कर ही रहा था कि एक दिन अचानक उन्होंने दूसरा ही टिकट कटा दिया। यो तो अच्छा हुआ कि वे भोपाल आए हुए थे, इसलिए उन्हें तुरंत दक्ष डॉक्टरों की सेवा मिल गई। वीरू ने उन्हें सबसे अच्छे नर्सिंग होम में भर्ती करा दिया। डॉक्टरों की पूरी टीम उन्हें बचाने का जी तोड़ प्रयास कर रही थी, पर सब व्यर्थ हो गया। बस यही संतोष रहा कि जो कुछ किया जा सकता था सब किया। यही अटैक अगर गांव में आता तो क्या होता। पापा के अंतिम क्षणों की छटपटाहट वीरू को आज भी याद है। नर्स, डॉक्टर्स सब समझ रहे थे कि चलाचली की बेला है, पर अपनी ओर से औपचारिकताएं निभाई जा रही थी। समझने को तो वीरू भी समझ रहा था और यही चाह रहा था कि जो कुछ होना है शांति से हो जाए। पापा की बेचैनी देखी नहीं जा रही थी। वह उनकी पलंग पर बैठ गया। अपने दोनों हाथों में उनका हाथ लेकर सहलाते हुए उसने कहा, पापा आप दीदी के लिए व्याकुल हो रहे हैं ना, मैंने फोन कर दिया है, बस आजकल में वह पहुंचती ही होंगी। पापा की भाव शून्य आंखें उसे घूरती रही। पापा आप इत्मीनान रखिए, मेरा घर दीदी के लिए हमेशा खुला रहेगा, उसे वहां भी वही आदर सम्मान और प्यार मिलेगा। जमीन जायदाद को लेकर भी हम दोनों के बीच कोई विवाद नहीं होगा। वह जो चाहेंगी, जितना चाहेंगी, मैं खुशी खुशी दूंगा। पापा सूनी सूनी आंखों से उसे देखते रह गए। अचानक वीरू के दिमाग में बिजली सी गौंधी। उसने पापा के कान के पास झुककर फुसफुसाकर कहा, पापा आप जिया की चिंता मत कीजिए, मैं आजीवन उनकी देखभाल करता रहूंगा, वचन देता हूं। पहली बार पापा की आंखों में कोई भाव उभरा, उनके होंठ फड़फड़ाए। उन्होंने वीरेश के दोनों हाथों को उठाकर चूम लिया और आंखें मूंद ली। वैधानिक दृष्टि से तो पापा की मृत्यु उसके 1.5 घंटे बाद हुई, क्योंकि तब तक सांस चल ही रही थी, पर वीरेश जानता है मन से वह असत्य का बोझ हटते ही पापा चिरनिद्रा में चले गए। बाकी सारे संस्कार तो खैर गांव में ही होने थे। 13 दिन तक वीरू को दम मारने की फुर्सत नहीं थी। दीदी के आते ही उनसे गले लगकर फूट फूट कर रोया था। उसके बाद तो रोने का भी अवकाश न मिला। सारे कार्यक्रम निर्विघ्न समाप्त होने के बाद ही वह चैन की सांस ले सका। अब भोपाल वापस लौटना था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ का तामझाम कैसे समेटे, क्या व्यवस्था करे। नौकरों की एक पलटन थी, आधा दर्जन गाय थी, 2 कुत्ते थे, 1 घोड़ा था, 1 शेवरलेट कार थी। एक अकेले इंसान के जाते ही सारी चीजें एकदम बेमानी हो गई थी। उसे सबसे ज्यादा चिंता थी जिया की। बार बार पापा को दिया हुआ वचन याद आ रहा था। आखिरकार उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया, मृणाल जिया को साथ ले चले? जिया को क्यों? यहां रहकर भी क्या करेंगी? वहां रहेंगी तो कुणाल से उनका जी बहला रहेगा। तुम भी निश्चिंत होकर क्लब में या किसी पार्टीज में जा सकोगी। सो तो ठीक है, पर रखेंगे कहां? सर्वेंट क्वार्टर तो चौकीदार को दिया हुआ है, खाली करवाएंगे तो मेरी मुसीबत हो जाएगी। उसकी बीवी मेरा पूरा काम करती है। तुम जिया को सर्वेंट क्वार्टर में रखोगी? यहां भी तो आउट हाउस में रहती हैं। वह आउट हाउस नहीं है, भरा पूरा घर है। वहां उनका पूरा परिवार रहता था, तो परिवार के साथ ही रहे ना। मैंने कहा कि पूरा परिवार रहता था, वीरेश ने था शब्द पर जोर देते हुए कहा। अब तो पूरा परिवार बिखर गया है, भाई भाभी बहुत पहले ही चल बसे थे। एक भतीजा कुवैत में है, एक दक्षिण भारत में कहीं है। माँ बाप के जाने के बाद दोनों ने कभी पलटकर इधर का रुख नहीं किया। एक बहन है जो खुद ही अपनी बेटी के घर पड़ी हुई है। जिया वहां तो कभी नहीं जाएंगी, तो ओल्ड होम में रखवा दो ना। ओल्ड होम मतलब वृद्धाश्रम में? क्यों, क्या हर्ज है? सुना है वहां गरीब बेसहारा बुजुर्गों की अच्छी देखभाल होती है। वीरेश ने कहना चाहा कि जिया ना गरीब है और ना बेसहारा, पर उसने चुप रहना ही श्रेयस्कर समझा। वह प्रसंग वहीं समाप्त हो गया। हर बार की तरह मुंशी जी गांव से आए हुए थे, अपने साथ घर का घी आम साग सब्जी आदि लेकर आए थे। जाते समय वीरेश ने पूरे अमले का खर्च उन्हें सौंप दिया था। मृणाल हमेशा की तरह यह देखकर कसमसा रही थी, पर इस बार उससे रहा ना गया। मुंशी जी के जाते ही उसने कहा, सुनो हम कोई राजा महाराजा नहीं है जो बिना बात के इतना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट पालते रहे। आपको नहीं लगता कि ये खर्च एक तरह से फालतू है? फालतू क्यों है? इतना बड़ा मकान क्या लावारिस छोड़ा जा सकता है? चौकीदार ना रखें तो लोग दरवाजे खिड़कियां उखाड़ कर ले जाएंगे, चोर उचके घर के बर्तनों पर हाथ साफ कर देंगे, माली ना रखें तो लोग बगीचा नोच खाएंगे, चरवाहा ना रखें तो गाय भूखी मर जाएंगी, और इन सब की देखभाल मेरे वश की नहीं है, इसलिए मुंशी जी को भी नहीं हटाया जा सकता। इसीलिए तो कहती हूं कि कोई परमानेंट व्यवस्था करो ना, ताकि ये हर महीने का झंझट ही समाप्त हो जाए। क्या व्यवस्था करूं? जानवर बेच सकता हूं, गाड़ी ठिकाने लगा सकता हूं, पर मकान का क्या करूं? उस छोटे से कस्बे में इतनी बड़ी हवेली के लिए किराएदार कहां से लाऊं? तो बेच दो। वीरेश ने मृणाल की ओर ऐसी नजरों से देखा कि पल भर को तो वह सहम ही गई। फिर भी साहस बटोर कर अपनी बात पर जोर देते हुए उसने कहा, देखो वी मस्ट बी प्रैक्टिकल। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी वहां पड़े पड़े बर्बाद हो रही है, इससे तो अच्छा है बेच दो, यही ना। क्या तुम पापा की बरसी तक भी इंतजार नहीं कर सकती? ओफो, मैं कोई आज ही बाजार में खड़े होने के लिए कह रही हूं क्या? पर इस दिशा में सोचना तो शुरू कर सकते हो। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का खरीदार कोई एक दिन में नहीं मिल जाएगा, महीनों लग सकते हैं। पापा जी की 2-3 बरसी निकल जाएंगी। डैडी कह रहे थे कि कम से कम 2 करोड़ तो मिलना ही चाहिए, तो इतना देने वाली पार्टी भी तो ढूंढनी पड़ेगी। वीरेश समझ गया कि ये आग किसकी लगाई हुई है। उसे गुस्सा तो बहुत आया, पर जब्त करके बोला, आधा दीदी को देना पड़ेगा, याद रखना। तो दे देंगे, और उन सब लोगों को कंपेंसेशन देना होगा जिन्हें हम नौकरी से या घर से निकालेंगे। जिया को छोड़ दो, पर बाकी लोग तो अपना हक मांगेंगे ही। तो दे देंगे भाई, फिर भी हमारे पास 70-80 लाख तो बच ही जाएंगे। उतने रुपयों में हम यहाँ एक आलीशान बंगला बनवा सकते हैं। और सुनो, बंगले के कंपाउंड में हम तुम्हारी जिया के लिए एक वेल फर्निश्ड आउटहाउस भी बनवा सकते हैं। खुश? वीरेश कुछ नहीं बोला। आउटहाउस में यानी कि घर के बाहर तो जिया जिंदगी भर रहती आई हैं। उसका अरमान तो उन्हें ससम्मान घर के अंदर लाने का था, पर मृणाल का रुख देखकर समझ गया कि यह संभव नहीं है, कभी संभव नहीं होगा। मृणाल ने उसकी उदासी को लक्ष्य नहीं किया, वह तो भविष्य की योजनाएं बनाने में व्यस्त थी। उन योजनाओं पर अपनी असहाय स्वीकृति की मुहर लगाने के अतिरिक्त उसके पास कोई चारा न था। हवेली का सौदा अंततः हो ही गया और ठीक ठाक ही हुआ। जयपुर की एक बड़ी पार्टी ने सौदा किया था, जो शायद वहां हेरिटेज होटल किस्म की कोई चीज बनाना चाहती थी। कालांतर में उस पर एक मंजिल चढ़ाने का भी उन लोगों का इरादा था। आम का बगीचा नगर सेठ ने खरीद लिया था और पुराने माली को भी रख लिया था। दीदी ने सभी कामों के लिए अपनी अग्रिम स्वीकृति बिना शर्त दे दी थी, इसलिए किसी झगड़े झंझट की संभावना ही नहीं थी। बंगले में लगे 4 आउटहाउसेस थे। पुराने मुंशी जी के घर में जिया रहती थी। एक में नए मुंशी जी का परिवार था, एक में पापा के पुराने ड्राइवर स्वर्गीय सलीम अली का परिवार था, एक में महाराजिन रहती थी जिनका बेटा पापा का नया ड्राइवर था। नए मालिकों को अपने स्टाफ के लिए इन क्वार्टर्स की जरूरत थी, तो खाली कराना जरूरी हो गया। पापा की मृत्यु के बाद से ही मुंशी जी एक नामी वकील के पास काम करने लग गए थे, तो मुआवजे के 2 लाख लेकर वे खुशी खुशी चले गए। यही हाल सलीम अली और महाराजिन के परिवार का भी था। इतनी बड़ी रकम उन्होंने जीवन में पहली बार देखी थी। वीरेश ने नाम मात्र दाम लेकर पुरानी गाड़ी भी महाराजिन के बेटे को दे दी, जिसे वह शादी ब्याह में किराए से चलाकर कमाई कर सकता था। पुराने अमले में जिस जिस ने इच्छा जाहिर की, गाय उन्हें दे दी गई। दोनों गार्ड नए मालिक की सेवा में लग गए। कोठी में सामान खचा खच भरा हुआ था। सारा कीमती सामान मृणाल अपने साथ ले गई। कुछ एंटीक फर्नीचर उसने अपने भावी बंगले के लिए रखवा लिया। बाकी का सामान कुछ बट गया, कुछ बिक गया और कुछ नए मालिकों ने रखवा लिया। एक भरी पूरी गृहस्थी देखते देखते तितर बितर हो गई और वीरेश असहाय नजरों से देखता रह गया। अब बस एक ही समस्या रह गई थी जो सबसे कठिन थी। एक ही सवाल था जो उसके दिल और दिमाग पर हावी था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उनका क्या करे। महज 2 लाख रुपए देकर वह उनसे मुक्त नहीं हो सकता था, होना चाहता भी नहीं था। अपनी ओर से तो वह उनके लिए खूब अच्छा प्रबंध कर चुका था, पर उनसे पूछना भी जरूरी था। वे कोई सामान की गठरी तो थी नहीं कि जहां मर्जी आई उठाकर रख दी। मृणाल के सामने वह इस प्रश्न को उठाना ही नहीं चाहता था। जब वह अपने मतलब का सारा सामान लेकर भोपाल लौट गई, तो उसके बाद ही उसने इत्मीनान से बात करने की ठानी। उस दिन रात के खाने के बाद वीरू ने जिया को अपने कमरे में बुला लिया। उसकी छोटी सी पढ़ने वाली मेज अब भी कमरे में थी। अपने सामने वाली कुर्सी पर जिया को बिठाकर उसने पूछा, जिया क्या तुम यहीं रहना चाहोगी? अगर चाहती हो तो बोलो, मैं जयपुर वालों से बात करके तुम्हारा वाला घर तुम्हारे नाम कर दूंगा। वहां इस उजाड़ में अजनबियों के बीच मैं क्या करूंगी? तो क्या विवेक या विकास के पास जाना चाहोगी? अपने मां बाप के मरने के बाद उन लोगों ने कभी मेरी खोज खबर ली है? कभी एक पोस्टकार्ड तक नहीं आया है। अब एकाएक उनके दरवाजे पर जाना ना उन्हें अच्छा लगेगा ना मुझे। तो दीदी से बात करूं? विशु से? ना बाबा, अगर हानि बीमारी में उसे मेरी जरूरत पड़ेगी तो जरूर जाऊंगी, पर हमेशा के लिए उसके घर में पड़ी रहूंगी यह संभव नहीं है। ये सारे उत्तर वीरेश को अपेक्षित ही थे, इसलिए उसे आश्चर्य नहीं हुआ। वह तो बस अपनी बात कहने के लिए एक भूमिका बना रहा था। अब उसने अपनी बात प्रारंभ की। जिया, मैं बस तुम्हारा मन जानना चाहता था। वैसे मैंने तुम्हारी व्यवस्था एक बहुत अच्छे हॉस्टल में कर दी है। अब इस उम्र में हॉस्टल में रहूंगी मैं? वह हॉस्टल उम्र दराज लोगों का ही है, तो सीधे सीधे वृद्धाश्रम कहो ना। नहीं, वह वृद्धाश्रम नहीं है, हॉस्टल है, बल्कि यूं कहो कि 3-स्टार होटल है। गाथा में अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी द्वारा लिखित कहानी अनिकेत का पहला भाग, जिसे प्रस्तुत कर रही थी आरती श्रीवास्तव।